हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए और अध्ययन करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन् वयादितरतश् चातिष्वभि क्यः स्वराट् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मोहयन्ति यात् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम् धीमहि धर्मः प्रोचितकै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सत्योरित्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಂ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಿ ಜಯ. 1.1.20 ಕೃಪಯಾ ಇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೀ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಪ್ರಸಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಋಷಿಗಣ ಕಹತೆ ಹೈ ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವ ಅತಿಮರ್ಥ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವ ಅತಿಮರ್ಥ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವ ಅತಿಮರ್ಥ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಕೃತವಾನ್ ಕಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಹ ರಾಮೇಣ ಕೇಶವಃ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಗೂಢಃ ಕಪಟ ಮಾನುಷಃ. ಶಬ್ದೋ ಕಾ ಅರ್ಥ ದೇಖಿಯೇ. ಕೃತವಾನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೇ ಕಹೆ ಕಿಲ, ಕಿಲ ಮತಲಬ್ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯ. ಸಹ ಸಹಿತ್ ರಾಮೇಣ ಬಲರಾಮ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣನೆ ಯಾನಿ ಅಬ್ ಋಷಿಕರ್ಣ ಸುತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಆಯೆ ಥೇ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಕರ್ಮ ಕಿಯೇ ಥೇ ಜೋ ಕಿ ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ, ಅತಿಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಮತಲಬ್ ಅಲೌಕಿಕ್ ಥೇ, ಯಾನಿ ಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರ ಕೆ ನಹಿ ಥೇ. ಉನ್ಹೋನೆ ಕೇಸೆ ಕೇಸೆ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯೇ ಥೇ, ಕೇಸೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯೇ ಥೇ ಭಗವಾನ್, ಯಾನಿ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಜೋ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯೋ ಸೇ ಯುಕ್ತ ಹೈ. ಗೂಢ, ಗೂಢ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಏಕದಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಜೋ ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯ ಹೈ ನಾ, ಜೋ ಕಿಸಿಕೋ ಖಬರ್ ನಹಿ ಹೋ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಛುಪೆ ಹುವೆ ಜೋ ಕಾರ್ಯ, ವೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಜಿನ್ಕೋ ಕೋಯ್ ಬಿ ಸಮಜ್ ನಾ ಸಕೆ. ಔರ್ ಕಪಟ, ಕಪಟ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಛಲ್, ಕಪಟ್, ಧೋಕಾ, ಯಾನಿ ಕಿ ಐಸಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಜೋ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯೇ ಥೇ ಉನ್ಮೇ ಏಕ್ ಕಪಟ್ ಥಾ, ಮತಲಬ್ ಉಪರ್ ಉಪರ್ ಸೇ ವೋ ಮಾನವ ಲೀಲಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ कपट मनुष्य, यानी कि दिखने में तो लग रहा था कि वो मनुष्य के जैसा कार्य, मनुष्य के जैसे लीला कर रहे हैं, नर वपु था उनका। जब भगवान श्री कृष्ण संसार में आए थे तो एकदम साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे, बट वो कार्य करते थे तो इतने गूढ़ थे, इतने अलौकिक भगवान के कार्यकलाप। और जब भगवान ने रामेण केशव लिखा ना, रामेण श्री बलराम जी को कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने, डायरेक्ट श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न हो रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ इस संसार में आए थे तो दिखने कपट मनुष्य, यानी कि दिखने में वो मनुष्य की तरह नर लीला कर रहे थे, लेकिन उनके कार्य इतने अलौकिक, इतने अद्भुत थे, इतने गूढ़ थे कि कोई भी उनकी लीलाओं को श्रवण करके मोहित हो सकता है। अब मनुष्य तो बहुत कम बुद्धि वाला होता है, लेकिन भगवान की लीलाओं को देखकर तो बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते थे। इतना कपट, उतने सीक्रेट उनकी लीलाएं थी। तो हम उन लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। अनुवाद देखिए, सूत जी से सोनिकादिक ऋषिगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित सामान्य, यानी सामान्य मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की हैं, और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर, यानी कि गुप्त रहकर, अपने अलौकिक स्वरूप को किसी को दर्शन नहीं कराया, सदैव प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। वो संसार में लौकिक दिखते मनुष्य की तरह, लेकिन अपने आध्यात्मिक, अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए उन्होंने बहुत ही कपट वाली लीलाएं की हैं, जो कि अलौकिक कृत्य है। उनके विषय में हम श्रवण करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते, अर्थात भगवान स्वयं भगवान है। भगवान किसी कोई कार्य करके, कोई ऐसा कार्य करके वो भगवान बने नहीं है। यानी कि कोई मनुष्य अगर बहुत बहुत विकसित हो जाए, बहुत बहुत तपस्या कर दे, यज्ञ कर दे, या बहुत बहुत ऐसे कार्य कर ले, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो भगवान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य या पशु विकसित होने के बाद, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद कभी ऐसा हो कि वो भगवान बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, थे और वही भगवान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी कोई दूसरा भी बन सकता है अपने विकास से। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे कि आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने निजी अवतारों की अपनी सृष्टि की है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना, विशेषकर बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखाकर तथा बाजीगरी से के कुछ कर्तव्य दिखाकर लौकिक मतदान द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आधुनिक समाज की इस बुद्धिहीनता के विषय में बता रहे हैं कि आजकल क्या होता है, खासकर बंगाल के इलाकों में और भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो अपनी कुछ लोकप्रिय शक्तियां दिखाकर, ऐसे कोई ऐसे कर्तव्य करके, कोई ऐसे बाजीगर, कोई चमत्कार दिखाकर, ऐसा लगता है कि लोग उसको सिर्फ भगवान मानना शुरू कर देते। किसी कोई ऐसा चमत्कार कर दिया, किसी की तबीयत सही हो गई, या किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या कोई और कर्तव्य दिखाकर लोग इतने धूर्त हो गए हैं, इतना मानव समाज बिगड़ गया है कि बस कोई ना कोई करतब दिखाकर उसको भगवान बना देते हैं, और जो थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है बोलते हैं बस यही भगवान है, इसी की शरण में चलो, यही सब कुछ ठीक कर सकता है, यही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और फिर हम जब उनको बता देना कि भगवान कृष्ण है, क्यों कृष्ण भगवान है, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है। क्यों कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कृष्ण को भगवान बनाते हैं। क्यों कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण ही को है ना समस्त वैदिक शास्त्र, समस्त ऋषि, समस्त देवता तक भगवान मानते हैं। जितने बड़े बड़े वेद व्यास जी ने कृष्ण को भगवान माना और कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चंद सकला पुंसहत्र, बहुत सारे भगवान की शक्तियां हैं, कलाएं हैं, लेकिन केवल कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान हो ही नहीं सकता, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इस बात को नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और जो चमत्कार दिखाते हैं, जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, थोड़े से जो अलौकिक लगते हैं, ऐसी बाजीगरी दिखाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते ये तो व्यापार बन गया है, धंधा बना दिया लोगों ने अपना, और किसी को भी भगवान समझ लेते हैं, किसी को भी भगवान बना देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भगवान ने भी कुछ चमत्कार किए थे जिसकी वजह से उसको भगवान बनाया दिया था। वे अपने आविर्भाव काल से ही भगवान थे। जब भगवान श्री कृष्ण अभी ऐसा नहीं था कि वो शुरू में साधारण पैदा हुए थे, फिर उन्होंने कोई ना चमत्कार किए थे कि वो भगवान बने। आविर्भाव यानी जिस समय वो आए थे पृथ्वी पर, भले वो एक दिन के भी थे तो भी वो भगवान ही थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल के अपने एक और भक्त के यहाँ पर चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यानी जिस क्षण भगवान उत्पन्न हुए थे उसी क्षण वो भगवान थे, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। वो चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए थे, लेकिन उनके अनुरोध पर उन्होंने फिर बालक बन जाना स्वीकार किया और द्विभुज रूप स्वीकार किया। आज कोई जो अपने आप को भगवान कहते हैं उनसे पूछे कि उनका जन्म कैसे हुआ था, क्या वो भी जन्म के समय भी भगवान थे या फिर उन्होंने अभी भगवान बनना शुरू किया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पहले कोई साधारण हो और बाद में भगवान बन जाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण संसार में आए उसी समय उन्होंने अपनी लीलाएं करना आरंभ कर दिया। उसी समय सारे जितने भी द्वारपाल थे उनको निद्रा आ गई, और जितने भी ताले थे वो सारे ताले टूट गए, और नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव जी उनको छोड़कर आ गए। यमुना नदी रास्ता नहीं दे रही थी, क्योंकि वो भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करना चाह रही थी। वो बढ़ती जा रही थी, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त किया तो रास्ता दे दिया, और वसुदेव जी बहुत ही सरलता से नंद बाबा के यहाँ पर भगवान को रख के, और वहां भगवान की जो यशोदा मैया के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ था जो भगवान की योग माया थी, उनको लेकर आ गए। तो ये सारी भगवान की कपट लीलाएं जो कि साधारण व्यक्ति लोग नहीं समझ सकते हैं। भगवान ने अपने जीवन काल में बहुत बहुत लीलाएं, अब यशोदा मैया के पास भगवान आ गए और वहां पर एकदम साधारण व्यक्ति की तरह, एकदम साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं करने लगे। कभी कहते मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इतनी तेज है, हमारे बच्चे कैसे बोलते हैं कि आज तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज भूख लग रही है, निकालो कुछ भगवान, आप क्या बनाया मम्मी कुछ दो। तो फिर भगवान भी ऐसे यशोदा मैया को बोल रहे थे क्या बना रहे हो आप, तो मैया ने कहा कि आपके लिए माखन बना रही हूँ, तब तक मैं आपको दूध पिलाती हूँ, आज आपको भूख लगी है ना। तो भगवान दूध पिलाते, यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी कि अचानक से क्या हुआ, जो दूध उन्होंने चूल्हे पर उबालने के लिए रखा था वो ऊपर आ गया, उबल गया, और यशोदा मैया ने जल्दी से कृष्ण को नीचे रखा और दूध को बंद करने गई, और इतना कृष्ण को क्रोध आया कि मेरी मैया मुझे रख दिया, और दूध ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, मुझे भूख लगी थी, देखना चाहता ना मैया को मैं कितना प्रेम से दूध पी रहा हूँ, और मुझे ना छोड़ के खुद चली गई दूध बंद करने के लिए। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था ना उसको, तो इतना क्रोध आया भगवान को, और इस क्रोध की वजह से भगवान ने एक लाठी उठाई और वो जो घड़ा था ना जिसमें यशोदा मैया माखन बना रही थी, उस घड़े को तोड़ दिया। अब देखो भगवान ने कि घड़ा टूट गया, अभी मैया आएगी मेरे को छोड़ेगी नहीं, बहुत मारेगी, तो जाके छुप गए। अब ये साधारण साधारण बालक जैसी लीला है ना, वरना तो भगवान कहाँ, भगवान को भूख और प्यास सना सताते हैं क्या, भगवान को ये भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है? लेकिन वो भगवान है, लेकिन नर लीला छुप गए और फिर डरने लगे कि अभी मैया आएगी और मुझे अभी तो जरूर पनिश करेगी। और यशोदा मैया ने आके जब उनको ढूंढ लिया तो फिर उनको रस्सी से बांधने लगी। अब ये भगवान की अद्भुत अलौकिक गूढ़ कपट मानुष्य के रस्सी जब भी यशोदा मैया बांधती तो दो उंगल छोटी पड़ जाती, क्योंकि भगवान भले खुद उस समय भगवान की योग माया ने भगवान को भी बुला दिया कि वो भगवान है, इसलिए वो रोने लग गए। अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से तो यशोदा मैया ने उनको पकड़ा था और दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे, रुदन्तम् उर्नेत्रम् युग्मं विजन्तम् काराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प तिलकङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरम् भक्तिपदम्। सांसें दीर्घ सांस ले रहे थे, उनका कंठ जो है उसमें जो मोतियों की माला तिरेखा जो उनकी थी वो ऐसे हिल रही थी मोतियों की माला उसकी वजह से, क्योंकि दीर्घ सांस ऐसे करके रो रहे थे और एक हाथ उनके आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी और एक हाथ से वो ऐसे करके साफ कर रहे थे, तो इतना डर रहे थे यशोदा मैया से। ये डरने वाली जो लीला एकदम कपट मानुष्य लीला है, वो दिखा रहे थे कि मैं साधारण हूँ, मैं डर रहा हूँ बहुत, और वाकई में उनको इस टाइम पर डर भी लग रहा था कि यशोदा मैया मुझे बांध देगी, और जोर जोर से उनको रोना भी आ रहा था। लेकिन साथ में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है, क्योंकि वो भगवान है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो मनुष्य खुद को समझ रहे हैं या फिर कोई और उनको मनुष्य समझ रहा है तो वो मनुष्य बन गए, ये तो भगवान की माया है, यही तो भगवान की गूढ़ कपट लीलाएं हैं कि वो स्वयं भी बोल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो रहते भगवान है। जैसे अगर सोना यहाँ पर हो, अगर सोने की कोई ज्वेलरी हो कोई, तो फिर अगर कोई उसको समझता है कि आर्टिफिशियल है तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना, वो तो सोना ही रहेगा। उस तरह भगवान तो भगवान ही रहेंगे, तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति वो उनको कभी भी बांधने नहीं देती है। तो फिर बंध नहीं रहा था भगवान और बार बार रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती थी, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम, यशोदा मैया का भाव, यशोदा मैया का दृढ़ विश्वास कि मैं तुम्हें बांध के ही छोड़ूंगी, जब यशोदा मैया ऐसा सोचती और फिर आखिर हार गई, बोले कृष्ण तुमसे हार गई, अब मैं नहीं बन सकती, अब मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं हार गई। तो भगवान के सामने जब भक्त हार जाता है और भगवान को सरेंडर करता है, भगवान की शरण में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तो भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों। फिर भगवान की एक दूसरी शक्ति जिसको कृपा शक्ति कहते हैं, वो भगवान की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि है, और जब कृपा शक्ति उदित होती है तो फिर बाकी सारी ऐश्वर्यमय शक्तियां जो भगवान को बांधने नहीं देती, जो भगवान को परास्त होने नहीं देती, वो सारी शक्तियां जो है वो हार जाती हैं, और केवल भगवान की कृपा शक्ति ही उस समय सबसे ज्यादा उसका पावर दिखाई देता है। और जब भगवान कृपा करते हैं तो हम जैसे पतित जो जीव है जो भगवान की शरण में आते हैं उन पर भी अनुग्रह करते हैं और भगवान पूरा का पूरा उनके हो जाते हैं, और यशोदा मैया के ऊपर कृपा की। और जब ये दो उंगल की कमी होती है, मनुष्य का अहंकार कि हम समर्पित नहीं होते हैं या फिर हमारा प्रयत्न में कोई कमी होती है, लेकिन जब हम समर्पित हो जाते, हम अपने प्रयत्न से भगवान को नहीं बांध सकते, हम अपने प्रयत्न से भगवान को अपने हृदय में नहीं ला सकते, लेकिन हमारे प्रयत्न से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा शक्ति को उदित करते हैं, जिसके कारण वो भगवान भक्त के हाथों वंदना स्वीकार कर देते। तो ऐसे कपट वाले जो भगवान के कर्म है यहाँ पर लिखा ना गूढ़ा कपट मानुष, कि वो मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, वो स्टार्ट से भगवान है, मतलब हमेशा से भगवान है, नित्य भगवान है, भगवान बने ने आज की कत यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि आज कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं और फिर उनके बाद उनको भगवान बना दिया जाता है। भगवान की जो अलौकिक लीलाएं हैं उनके जैसा वो कोई कार्य कर ही नहीं सकते। भगवान ने 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी एक कानी उंगली पर, जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है ना, उसके ऊपर धारण किया, ना कभी हाथ बदला, ना कभी वहां से हिले और ना ही विश्राम किया, कंटिन्यूस खड़े और कंटिन्यूस मधुर। ऐसा नहीं कि अब वो बता रहे हैं कि अभी मैं वो थक गया हूँ, काश ये बारिश बंद हो जाए तो मैं ये गोवर्धन पर्वत को रखूं, नहीं, मजा कर रहे हैं सारे भगवान के जो यहाँ पर भक्त हैं, भगवान के जितने भी ग्वाल बाल डांस कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, गोपियां रास्ते खेल रही हैं और भगवान के साथ है ना अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। आज के जो तथाकथित भगवान बनने के लिए जो बोलते हैं कि भाई हम भी भगवान हैं, उनको बोलो कि भाई 7 दिन नहीं 7 घंटे तक एक मन की जो बोरी होती है ना चावल की, वो अपनी इस छोटी उंगली के ऊपर खड़ा करके आप खड़े हो जाओ और हिलना जुलना नहीं है तो 1 घंटा, 7 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 7 दिन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी वो एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, 1 दिन के लिए भी वो बगैर खाए पिए नहीं रह सकते, विश्राम के बगैर तो वो खुद ही लुढ़क जाएंगे, तो फिर और किसी की क्या सहायता करेंगे। तो भगवान जो है वो साक्षात भगवान है, लेकिन वो जो कार्य करते हैं उनके अंदर इतनी अद्भुत अलौकिक उसके अंदर होता है, इतनी गूढ़ होती है, यहाँ पर देखा ना गूढ़ कपट मानुष, तो ये अति मर्त्यानी होते हैं। साधारण मानव जो है जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं वो ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन भगवान की लीलाएं जो है वो बहुत कपट वाली होती है, बहुत ही सीक्रेट होती है और भगवान के शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं समझ सकता। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्त ही मुझे और मेरी लीलाओं को समझ सकते हैं, उसके अतिरिक्त कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ध्यानी, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा तपस्वी भी जहाज है तो भी वो मुझे नहीं समझ सकता। आगे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसी प्रकार बलराम भी जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। अभी बलराम यहाँ पर सह रामेण केशव, कि यहाँ पर राम यानी बलराम जी की बात की गई कि वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के ही अंश हैं और भगवान स्वयं साक्षात भगवान में से जो पहला एक्सटेंशन निकला है और वो है शंकर शान, तो वही भगवान बलराम को जो कोई साधारण नहीं है उन्हें भी लोग साधारण समझते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म सब दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत ही मुक्त होकर भगवत धाम में जा सकता है। कितना सरल भगवान ने भगवत धाम में जाना बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 9, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति न मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता। खाली जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, जो खाली ये जान लेता है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है वो सब दिव्य हैं, वो कोई साधारण नहीं है, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, इतना भी यदि कोई जान लेते हैं तत्व से तो फिर वो दोबारा कभी भी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते, बल्कि मामेति सोऽर्जुन, बल्कि मुझे प्राप्त कर देते हैं, कभी भी उनको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता, भवबंधन में नहीं फंसना पड़ता, जो मुझे ही समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। खाली हम जो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों के विषय में पढ़ेंगे तो हमारी मुक्ति के लिए वह काफी है, और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ श्रील प्रभुपाद ने देखो अपने शब्दों में कहा कि इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। 9 स्कंद तक हम भगवान की जो दिव्य प्रकृति है उनके विषय में पढ़ेंगे और 10वें स्कंद में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। अति मानवीय लिखा हुआ अति मर्त्यानि भगवान, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उत्पन्न हुए और बहुत दिनों के बाद भगवान को ये रियलाइज हुआ कि मैं भगवान हूँ और अभी मैं भगवान जैसे कार्य करना शुरू करूँ। नहीं, भगवान ने जिस समय जन्म लिया अपनी माता की गोद से ही अलौकिक कार्यकलाप शुरू कर दिए थे। और अतिमर्त यानी अति मानवीय यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत का उठाना, ये जैसे छोटे छोटे अभी भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे और इतनी बड़ी बड़ी राक्षसी पोतना का वध किया, ये सारे भगवान के अति मानवीय कार्य है जो साधारण मानव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के अंदर और साधारण मानव जो आजकल अपने आप को भगवान कहलाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं और लोग बेवकूफ, वो तो बेवकूफ हैं, बेवकूफ बना रहे, लेकिन बेवकूफ बनाने वालों से भी ज्यादा बेवकूफ बना तो वो होता है जो बेवकूफ बन रहा है। वो तो चलो ठीक है, अपने कर्तव्य दिखा के अपने आप को भगवान कहलाना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन ज्यादा बेवकूफ तो वो है, वो तो अकेला है ना, एक अकेला बेवकूफी कर रहा है तो समझ में आता है। ये करोड़ों लोग जो उनको शरण में जाते हैं, उनको भगवान समझकर उनको सरेंडर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सीधा साधा मनुष्य है, बस कोई चमत्कार दिखा दिया तो उसको भगवान समझ दिया, हद करते हैं बेवकूफी की। और यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जो है वो अति मानवीय कार्य करते हैं और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक भगवान सिद्ध करते हैं। भगवान के कार्य जन्म से स्टार्ट होते हैं, वो शुरू में तो वो भी ऐसे साधारण मनुष्य, भगवान भले कैसे मनुष्य जैसे कार्य कर रहे होते हैं, जैसे भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया एक बालक की तरह, वो बंध भी गए एक साधारण बालक की तरह, लेकिन फिर भी उनके ऐश्वर्य शक्ति को तो नहीं खत्म कर सके ना, वो आए और उन्होंने दो वृक्षों को जो कि नल कुबेर और मणिग्रीव जो यमुना अर्जुन वृक्ष के पुत्र थे उनको बावन से छुड़ाया, उनको गिरा दिया। अब कोई साधारण बालक जो कि इतना छोटा हो वो ऐसे कर सकता है कि दो वृक्षों को गिरा दे और फिर वो दोनों देवता भी प्रकट होकर भगवान की स्तुति कर रहे? तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो साधारण मानव लीला भी करते हैं तो उसके साथ साथ अपने भगवत्ता को प्रदर्शित करते रहते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझते, लेकिन उनके साधारण साधारण कार्यों में भगवत्ता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मनुष्य शिशु ही समझे जाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेम करते हैं ना वो, तो वो मानना नहीं चाहते। भगवान जब भी भगवान ने उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया तो यशोदा मैया और नंद बाबा सब लोग भाग भाग कर आए, क्योंकि इतना तेज आवाज हुआ था, सब लोग ने भाग के देखा तो इतने बड़े बड़े दो पेड़ और वो दोनों गिरे हुए देख के हैरान हो गए और उनके माइंड में मतलब उनकी ख्याल में तक नहीं आया कि कृष्ण ऐसा कर सकता है। सारे दूसरे जो ग्वाल बाल थे उनसे पूछा कौन आया था, किसने किया, ये सब कैसे हुआ, कृष्ण को कैसे गिरे, कैसे वो शुक्र भगवान का कि कृष्ण के ऊपर नहीं गिरे, अगर कृष्ण के ऊपर गिर जाते तो इतना रो रहे थे वो और इतना शुक्र कर रहे थे। मतलब भगवान अपनी भगवत्ता के साथ साथ भगवत्ता प्रदर्श करते हुए यानी दिखाते हुए साथ साथ उसको गूढ़ रूप में उसको छिपाते थे, क्योंकि अगर अभी वो है ना यशोदा मैया ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। जब यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया था ना तो बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा यशोदा मैया को, मैया तुम्हें पता है तुमने किसको बांधा है? तो मैया ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप ही ज्ञान दे दीजिए किसने किसको बांधा है। तो बोला ये साक्षात भगवान है, भगवान जो हमेशा ये अवतार ही है, जितने भी जो भगवान के अवतार हुए ना, मत्स्य, कश्यप, वामन, नरसिंह, ये नरसिंह भगवान भी अवतार इन्होंने लिया है और तुमने इसको बांधा है, इसको बांध तुमने इसको बांध कर बहुत बड़ी गलती की है, ये बहुत बड़ा, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। तो यशोदा मैया बोलती है अच्छा ये मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वामन सारे अवतार इसी ने लिए है? तो बोला हाँ इसी ने लिए है। बोला ये जो छोटी सी बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं करती है, ये रोता हुआ मेरे पास आ जाता है, मम्मा मुझे, मम्मी माता जी ये बिल्ली मेरे को खा जाएगी, और ये नरसिंह अवतार लिया इसने, ये तो मुझे बताना चाह रहे हो। तो ना बलराम जी बोलते हाँ यही है सबसे बड़े अवतारी और इन्हीं के सारे अवतार है, ये तो लीला कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है मैं मान लेती हूँ, ये अगर भगवान नारायण है और सारे अवतार यही लेते हैं तो तुम कौन हो? बलराम जी ने कहा मैं अनंत प्रेरण हूँ, मैं शेषनाग हूँ जो इस पृथ्वी को अपने सिर पर एक राई के दाने के बराबर उठाता है, मैं एक फूंक मार के इस पूरे संसार को जला सकता हूँ। तो बोला अच्छा तुम अनंत शेष हो और ये भगवान नारायण है समस्त अवतारों के अवतारी, तो भगवान नारायण को कोई दूसरों का घर मिला नहीं, सारे अवतार मेरे ही घर पे आकर जमा हो गए, तुम भागो यहाँ से वरना अभी मैंने खाली इसको बांधा है ना, अभी तुम्हें भी इसके साथ बांध दूंगी, फिर दोनों भगवान बैठ के यहाँ पर मजे करना। तो क्योंकि भगवान की योग माया इतनी प्रबल है कि भगवान साक्षात इस संसार में आते हैं, लेकिन अपने परिजनों को अपने प्रेम का आस्वादन दिलाने के लिए वो अपनी मानव लीला को ही प्रदर्शित करते हैं और अपने भगवत्ता को छुपाते हैं, लेकिन जितना भी छुपा है लेकिन वो भगवान है, तो भगवान का ऐश्वर्य सदैव उनके साथ साथ सम्मिलित रहता है। इसी बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इतने पर भी अपने योग आवरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य शिशु ही समझे जाते हैं। जब भी वे कोई अत्यंत प्राकर्मी कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा बलवान बल वाला कार्य करते हैं, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते हैं। जो भी कार्य हो रहा होता है तो वो ये नहीं सोचते कि कृष्ण की ये लीला है, वो सोचते अब जैसे भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया तो फिर उनके जो गोप सखा थे ना वो साथ में लाठी लेके खड़े हो गए कि लाठियों से भी है ना थोड़ा पावर, जैसे नहीं स्तंभ होते हैं पिलर्स की तरह, लाठियां लगा दी इतनी सारी, तो वो सब समझ रहे हैं कि भगवान ने अकेले थोड़ी उठाया, भगवान ने खाली इसको थोड़ा सा सहारा दिया, बाकी पूरा जो भार है गोवर्धन पर्वत का वो इन लाठियों की वजह से ना टिका हुआ है। तो भगवान ये जो साधारण भगवान के प्रेमी भक्त यहाँ पर आते हैं तो भगवान को साधारण शिशु की भांति समझते हैं और अन्य रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें भगवान की भगवत्ता को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते नहीं, योग माया उनको दिखाना चाहते, यदि भगवान को भगवान समझना शुरू कर देंगे तो भगवान की परस्तिश, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे और भगवान के साथ जो उनका प्रेम व्यवहार है वो उसमें एक भगवान जैसा भाव आ जाएगा। इसलिए भगवान चाहते नहीं है, इसलिए भगवान की योग माया भगवान को भी बुला देती है कि वो भगवान है और भगवान के जो प्रिय गण जो परिकर गण है उनको भी बुला देती है कि वो भगवान है, लेकिन बुला देने के बावजूद भी वो भगवान ही रहते हैं, उनकी भगवत्ता खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि अतएव नैमिषारण्य के ऋषि उन्हें मनुष्यवत बताते हैं लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष्य, कि मनुष्य जैसी वो लीलाएं करते हैं लेकिन वास्तव में वो लीलाएं बहुत ज्यादा गूढ़ होती हैं, सीक्रेट होती हैं। तो हम उन लीलाओं के विषय में जानना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो ऋषिगण है वो भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बहुत व्याकुल है और हर श्लोक में अपनी इस लालसा को प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों, जब तक हमारे हृदय में इतनी तीव्र लालसा नहीं उत्पन्न होती है ना, तब तक हम इस अति अमृतमयी शब्दों को या अमृतमयी जो भगवान की लीलाएं हैं उनको ग्रहण करने का वो आस्वादन नहीं कर सकते। इसीलिए ये पूरे चैप्टर में हम लोग केवल उनकी तृष्णा, उनकी लालसा, उनकी उत्सुकता को ही देख रहे हैं, और यही वेद व्यास जी ने पूरे चैप्टर में हमें बताया है कि भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने से पहले आपके हृदय के अंदर भगवान की लीलाओं को श्रवण करने की अत्यधिक लालसा होनी चाहिए, अत्यधिक उत्कंठा होनी चाहिए, एक बहुत तीव्र आपके हृदय में प्यास होनी चाहिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करने की, तभी हम भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।